तत्कर्मगुणवीर्याणि कश्यपस्य महात्मना पश्चाद्वक्ष्यामहे आदित्याम् यथेवावततारः वर्ड टू वर्ड मीनिंग शब्दार्थ तत् उसका कर्म कर्म गुना गुना वीर्यानी तथा शक्ति काश्यपस्य कश्यप के पुत्र के महाआत्मना परम आत्मा पश्चात बाद में वक्ष्यामहे मैं वर्णन करूँगा अदित्याम अदिति से यथा कैसे एव निश्चय ही अवततार अवतार लिया निसंदेह अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा बाद में आठवें स्कंद में मैं यह वर्णन करूँगा कि किस प्रकार कुरुक्रम अर्थात भगवान वामन देव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोकों को अपने पंगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों गुणों शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूँगा। श्लोक 10 अथ कश्यप दायादान दयते यान कीर्तयामिते यत्र भागवत श्रीमान प्ररादो बलिर एवच। अनुवाद अब मैं दीति के उन पुत्रों का वर्णन करूँगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए किंतु जो असुर बने। इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि वे दीति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। श्लोक 11 दीते द्वाव एव दायादौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकशिपु नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। अनुवाद सर्वप्रथम दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। श्लोक 12 और 13 हिरण्यकशिपुर्भार्य कयादुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया सातु सुसुवे चतुर सुतान सम्राधम प्राग अनुराधम हृदादम प्रह्लादम एवच तत्स्वसा सिमिका नाम राहुम विप्रचितो अग्रहीत। अनुवाद हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु नाम से विख्यात थी। वह जम्ब की पुत्री एवं धनु की वंशज थी। उसके एक एक करके चार पुत्र हुए जिनके नाम समलाद अनुलाद हिलाद तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिमिका था। उसने विप्रचित नामक असुर से विवाह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। श्लोक 14 शिरो अहराद्यस्य हरीश चक्रे न पिबतो अमृतम सम्राद्य कीर्तिर्भार्य सुत पंचजनम तत। अनुवाद जब राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो भगवान हरि ने उसका सिर काट लिया। संवाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजनन नामक नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्लोक 15। हृदादस्य धाम निर्भार्य सूत वातापिम ईलवलम यो अगस्त्याय त्व अतिथे पेचे वातापिम ईलवल। अनुवाद। लात की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापी तथा ईलवल नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि ईलवल के अतिथि बने तो उसने वातापी को, जो मेढ़े के रूप में था, पकाकर भोजन करवाया। श्लोक 16। अनुरिदादस्य सूर्यायाम बास्कलो महिषस्तथा वीरोचनस्तु प्रहारादिर देव्याम तस्या अभवत बलि। अनुहलाद की पत्नी सूर्या थी। उसने बाष्कल तथा महिष नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म लिया। श्लोक 17। बान ज्येष्ठम पुत्र शतम अशनायाम ततो अभवत तस्या अनुभावम सुश्लोक्यम पश्चात एवाभिधास्यते। अनुवाद। इसके पश्चात अश्ना की कोख से महाराज बलि को एक 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राजा बान शेष थे। बलि महाराज का चरित्र महिमा अत्यंत प्रशंसनीय है और उनका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा। श्लोक 18। बान आर्धय गिरीशाम लेबे तत् गण मुख्यताम यत्पार्श्वे भगवान आस्ते ही अद्यापि पुरपालक। अनुवाद। चूंकि राजा बाना शिवजी का उपासक था, अतः वह उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों गणों में से एक बन गया। आज भी शिवजी राजा बान की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। श्लोक 19। मरुतश्च दिते पुत्रास चत्वारिशान नवादिका त आसन अप्रजा सर्वे निता इंद्रेन सात्मताम। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। दीति के गर्भ से 49 मरुदेव भी उत्पन्न हुए। इनमें से किसी के संतान नहीं हुई। यद्यपि दीति ने उन्हें जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें देवपद प्रदान किया। तात्पर्य। असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस विश्व में दो प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षु उन्मिलितम येना तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये वाला लाइट चाहिए क्या आपको रिकॉर्डिंग के लिए? ये थोड़ा आँख में आता है। तो हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें सुखदेव गोस्वामी दीति के वंशज के बारे में चर्चा करते हैं कि दीति ने कश्यप मुनि से विवाह किया और उनके जो पुत्र हुए वो दीति के नाम से दैत्य कहलाए, अदिति के जो पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए, दीति के जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए, दानु के जो पुत्र हुए वो दानव कहलाए। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो ऐसे दीति के दैत्य। हरे कृष्ण। तो दीति ने जब गर्भधारण किया था तो समय सही नहीं था और कश्यप मुनि ने उनको ये बात बताया था, लेकिन फिर भी उनके मन में काम का प्रभाव था और उनको पहले दो पुत्र जो हुए वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो बहुत बड़े असुर हुए, और ऐसे आगे वो वंश चला। तो सुखदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि अलग से दीति के 49 पुत्र हुए जिनको बाद में इंद्र ने देवताओं का पोस्ट दे दिया, देवताओं का स्थान दे दिया। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, दैत्यों को देवताओं का स्थान कैसे मिल गया। ऐसे कभी कभी समाज में प्रश्न उठता है कि ये आदमी को ये पोस्ट कैसे मिल गया, ये तो लायक नहीं है, इसके तो गुण नहीं है ठीक से। कोई सरकार में आ जाता है, कोई समाज में नेता बन जाता है। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए कि एक आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति देवता बन गया और ऐसा संभव हो रहा है तो समाज में बहुत भला होगा, क्योंकि समाज में आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के कारण बहुत अशांति होता है, बहुत हिंसा होता है और बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। जैसे आज आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपके लगेज का, आपके सामान का, आपके शरीर का सिक्योरिटी चेक होता है, और किसी भी बड़े फैक्ट्री या कंपनी में जाओ आपका स्कैनिंग होता है, सिक्योरिटी चेक होता है कि कहीं ये व्यक्ति हथियार या बम तो नहीं लेके आया। अभी हर जगह पे, हर एयरपोर्ट पे, हर स्टेशन पे और हर भीड़ वाले इलाके में, मॉल में करोड़ों रुपया खर्च होता है ये सिक्योरिटी अपैरेटस में, सिक्योरिटी इक्विपमेंट में, मंदिरों में भी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ गिने चुने लोग हैं जो आतंकवादी का काम करते हैं और उनके कारण हर नागरिक पे शक करना पड़ता है और हर नागरिक को चेक करना पड़ता है कितना खर्चा होता है, कितना टाइम जाता है, कितना असुविधा होता है। और आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ये सब जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट की कंपनियां होती हैं, इतना पैसे जो कमाते हैं, ये पैसे कहाँ से आता है सरकार के पास? आपके टैक्स से। तो कुछ गिने चुने लोग आतंकवादी हैं, उसके कारण करोड़ों लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है अपना ही चेक करने के लिए कि मैं हथियार लेके जा रहा हूं क्या नहीं, अपना ही चेक करने के लिए कि मैं बम लेके जा रहा हूं क्या नहीं, मैं आतंकवादी हूं क्या नहीं, ये पैसा लो और मुझे चेक करो कि मैं आतंकवादी हूं क्या नहीं। वाह, क्या समाज हो गया है। तो आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होता है वो समाज में बहुत परेशानी करता है। ये तो छोटी सी बात है, इससे भी बड़े बड़े परेशानी हो करता है। तो असुर तो है, ब्रह्मा जी ने वैसे बनाया है दो प्रकार के व्यक्ति, आसुरिक असुर और देवता। क्या फर्क है? फर्क यह है कि जो व्यक्ति विष्णु को अपना भगवान मास्टर मानता है, भक्ति करता है, भक्तों का सम्मान करता है, भक्ति के प्रोसेस में अनुकूल है, वो देवता। और जो व्यक्ति विष्णु के विरुद्ध है, भक्तों के विरुद्ध है, भक्ति के प्रोसेस के विरुद्ध है, प्रतिकूल है उसका भाव, वो असुर। ये गुण से पता चलता है, और कोई तरीका नहीं है पता करना। जो आसमान में स्वर्ग में है वो देवता, वो एक पोस्ट है, और जो पाताल लोक में वो असुर, वो एक स्थान है। लेकिन असली में अलग अलग युगों में वो अलग अलग प्रकार से रहते थे। सतयुग में असुर अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे, और दोनों शांत से रहते थे। फिर त्रेता युग में असुर और देवता, असुर और भक्त दोनों एक ही लोक में रहते थे, लेकिन अलग अलग देश में रहते थे। और जब मिलते थे तो युद्ध होता था, जैसे राम जी अयोध्या में रहते थे और उनके भक्त, और रावण लंका में रहता था, बीच में बड़ा समुद्र था, दोनों शांति से रहते थे, लेकिन जब मिले तो युद्ध हुआ। द्वापर युग में असुर और देवता एक ही घर में रहते हैं, दुर्योधन एंड युधिष्ठिर एक ही घर में, बार बार युद्ध होता था, झगड़ा होता था। कलयुग में असुर और देवता एक ही शरीर में रहते हैं, 24 घंटा युद्ध चलते रहता है अंदर, सही और गलत के बीच में, ये करूं या वो करूं, मंगल आरती को जाऊं या नहीं जाऊं, जप करूं या नहीं करूं, ये नियम तोड़ूं या नहीं तोड़ूं, क्लास जाऊं या नहीं जाऊं। असुर और देवता अंदर प्रवृत्ति हरेक के है कलयुग में, और रोज उनका झगड़ा हो रहा है। अगर हम पापी लोगों का संग करेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे, और अगर हम भक्तों का संग करेंगे हम भी भक्त हो जाएंगे। ये हरेक के लिए लागू है आज कलयुग में। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो रोज सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, और आप उनके साथ रहते हैं, एक दिन आप भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो रोज भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनका नाम उच्चारण करते हैं, और उनके साथ रहते हो आप, तो एक दिन आप भी उनका नाम उच्चारण करोगे और उनको प्रणाम करोगे। तो संग का बहुत ज्यादा प्रभाव है कलयुग में। तो अच्छे संग से हम अच्छे बनते हैं, बुरे संग से हम बुरे बनते हैं। इस नियम से कोई बच नहीं सकता। इसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक भक्तों का समाज बनाया है उन्होंने, कि इसमें आकर देश विदेश के सब भक्त साथ में रहकर कृष्ण भावनामृत, अपना कृष्ण भावनामृत को बढ़ाएं, कृष्ण के चेतना को बढ़ाएं, कृष्ण के सेवा को बढ़ाएं, कृष्ण को प्रेम करें। ये प्रभुपाद जी ने संस्था स्थापित किया है हमारे फायदे के लिए, इसलिए हमें आना चाहिए और भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। तो इससे हमारा आसुरी प्रवृत्ति बंद हो जाएगा और देवता का प्रवृत्ति बाहर आएगा, और हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। असुर मतलब जो भक्ति के खिलाफ, भक्तों के खिलाफ और भगवान के खिलाफ। असुर मतलब बदसूरत होना चाहिए, काला होना चाहिए, दो सिंह होना चाहिए, दो दांत बाहर आना चाहिए, लाल बाल होना चाहिए, ये नहीं, जरूरी नहीं ऐसा। असुर बहुत खूबसूरत भी हो सकता है, अच्छा क्लीन शेव भी हो सकता है, बिना सिंह बिना बड़े दांत का भी हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, सूट बूट पहन सकता है, कार में घूम सकता है, शूज पहन सकता है, बहुत अच्छा बातचीत कर सकता है, मीठा मीठा मोबाइल लेके घूम सकता है, समाज में उसको जेंटलमैन बोलेंगे, या वो खादी पहन के घूम सकता है, या असुर साधु का सैफरन ड्रेस और कंठी माला पहन के भी घूम सकता है। सिर्फ ड्रेस देखकर पहचान नहीं सकते। डू नॉट जज बाय ड्रेस एंड बाय एड्रेस। किसी का ड्रेस सैफरन हो सकता है, किसी का एड्रेस वृंदावन या मायापुर या हरिद्वार हो सकता है, लेकिन ये काफी नहीं ये काफी नहीं है पहचानने के लिए कि ये व्यक्ति साधु है। साधु पैंट शर्ट में हो सकता है, असुर सैफरन ड्रेस में हो सकता है, व्यासासन पे बैठा हुआ हो सकता है। इसलिए भक्तिनो ठाकुर लिखते हैं कली चेला, जो कली का प्रतिनिधि है, जो भक्तों के समाज में भक्तों का आदतें लेकर, भक्तों का वेश लेकर भक्तों में झगड़ा करवाता है, या भक्तों को भक्ति से दूर लेके जाता है, या भक्तों को माया में खींच लेता है, तो ड्रेस और एड्रेस से नहीं, गुणों से साधु पता चलता है। जो सहनशील है, जो क्षमाशील है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें करुणा है, जो सत्य बोलता है, जो साफ सफाई रखता है, जो तपस्वी है, जो अपने इंद्रियों को दमन में रखता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, वो साधु है। और जो चार नियम तोड़ता है, मांस मछली खाता है और जुआ खेलता है, शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध रखता है, या नशा करता है, या गौ हत्या करता है, या साधुओं के प्रति ईर्ष्या रखता है, भगवान के सामने झुकता नहीं है, या भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं करता है, या कहता है कि भगवान का रूप नहीं है, वो आसुरिक प्रवृत्ति है। मगर इस कलयुग में ऐसा बनाया गया है, ऐसा मौका दिया गया है कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भी भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में कहानी आती है मृगारी की। मृगारी एक हिंसक शिकारी था और वो जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को तीर मारता था और उनकी टांग तोड़ देता था ताकि वो भागे नहीं, और वो घायल जानवर जिसका जख्म से खून बहता था और टांग टूटा हुआ है तो चिल्लाता था, दर्द में, कष्ट में, तकलीफ में चिल्लाता था, तड़पता था, चीखता था, आधा मरा हुआ धीरे धीरे 3-4 घंटे में मर जाता था, ऐसा मृगारी करता था। और जब उस जानवरों को तकलीफ में तड़पता देखता था, आधा मरा हुआ, तो उसका मनोरंजन होता था, उसको मजा आता था, उसको आनंद आता था। तो मृगारी का ऐसा प्रवृत्ति था कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर उनके कष्ट को देखकर आनंद लेता था। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का प्रवृत्ति है कि दूसरों के दुख पे हमको सुख होना, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल बहुत लोग न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में क्या आता है, दूसरों का दुख आता है, दूसरों का दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आता है, और उसको देखकर हमें एंटरटेनमेंट होता है कि अच्छा टाइम पास हो गया। ये अच्छा नहीं है, इसकी आदत नहीं होना चाहिए कि दूसरों को दुख में हमको एंटरटेनमेंट हो रहा है, हमका हमारा टाइम पास हो रहा है, इसमें इच्छा नहीं रखना चाहिए। सब दुख का न्यूज होता है, सुख का न्यूज नहीं होता है। अभी हमारे मंदिर में इतना अच्छा मंगल आरती हुआ, इतना अच्छा गुरु पूजा हुआ और क्लास हो रहा है, ये आनंद का न्यूज़ है? आएगा अखबार में? नहीं आएगा। कल अभी मैं मुंबई से आया, इधर क्लास दिया, चलो समझो अच्छा क्लास है, तो आएगा कल अखबार में? नहीं आएगा। अभी मैं किसी को झापड़ मार दूं इधर तो कल अखबार में आएगा, मुंबई से साधु आया वृंदावन मंदिर में झापड़ मार के चला गया। दुख का न्यूज़ है, तकलीफ का बात है तो समाचार अखबार में आ जाएगा या वायरल हो जाएगा। क्लास वायरल नहीं होगा, झापड़ की बात वायरल होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पसंद आता है, प्रजल गंदगी। तो मृगारी ऐसा था, उसको आनंद आता था दूसरों को कष्ट में देखकर, और दूसरों को कष्ट में देखकर जो उसको आनंद आता था इसके लिए वो कष्ट देता था। और नारद मुनि जब उनको प्रचार किए और उनको कृपा किए और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने को कहे तुलसी महारानी के सामने, तो कुछ ही समय में मृगारी का हृदय परिवर्तन हो गया। बाद में जब नारद मुनि एक साल बाद मिलने आए और मृगारी गया उनके करीब, तो वो दंडवत प्रणाम करना चाहता था लेकिन नीचे चींटियां थी, और मृगारी समझ गया कि अगर मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो मेरे शरीर के वजन से चींटियों को तकलीफ होगा, तो उसने अपने ऊपर का कपड़ा उतारा और सब चींटियों को नाजुक तरीके से नरम तरीके से साइड में किया, बाद में दंडवत प्रणाम किया। कोई कहेगा ये एक साल पहले शिकारी था? इतना हिंसक शिकारी जानवरों को आधा मार के मजा लेता था, आनंद लेता था, आज एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, अहिंसक साधु बन गया वो। उसका आसुरिक प्रवृत्ति चला गया और वो साधु बन गया। तो ये क्योंकि उसने नारद मुनि का संग किया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। तो आज अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं, किसी में पाप की प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है या कोई बुरी आदत है, तो एक ही तरीका है कि उसको बोलिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे उनका आसुरिक प्रवृत्ति चला जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, कि जब भी मैं अवतार लेता हूँ साधुओं की रक्षा करता हूँ और असुरों को मारता हूँ। मगर वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो किसी भी असुर को मारे नहीं। जगह मदई थे, बहुत पापी थे, और क्रोध में मदई ने नित्यानंद प्रभु के सर पे शराब का ग्लास था, मटका था, वो मारा, मट्टी का मटका, और उनका सर फोड़ दिया, खून बहने लगा। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये समाचार मिला तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उधर आए और तुरंत उनका सुदर्शन चक्र भी उनके हाथ में आ गया। वो मदई की हत्या करना चाहते थे, असुरों को विनाश करना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। बोले महाप्रभु नहीं नहीं, नो नो नो, मत मारो मदई को, मत मारो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मैं मारूंगा, मेरे निताई को मारा उसने, मेरा काम है असुरों का वध करना, साधु की रक्षा करना, अपने निताई का ही रक्षा नहीं करूं मैं तो क्या मतलब? भगवदगीता का श्लोक तो सच होना चाहिए ना। तो नित्यानंद प्रभु का नहीं नहीं, मत मत मारो, इस अवतार में आप नहीं मारते। क्यों नहीं मारते हैं इस अवतार में? क्योंकि अगर इस अवतार में आप मारेंगे तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, प्रचार किसको करेंगे? कैसे पृथ्वी खाली हो जाएगी? क्योंकि सबको मारना पड़ेगा, सभी जगह ही मदई है, सभी पापी हैं। ऐसा कौन खड़े होकर बोल सकता है मैंने जीवन में पाप नहीं किया? ऐसा कौन खड़े होकर बोल सकता है कि मैंने कहीं अधर्म नहीं किया? आज सभी का हृदय सभी पतित हैं, सभी का पतन हो गया है, सभी का हृदय खराब हो गया है। तो इस अवतार में आप पाप को मारते हैं, पापी को नहीं मारते हैं। उसके हृदय में जो पाप है, पाप का बीज है, पाप की प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है, उसको मारते हैं, तो आप मदही को माफ कर दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने जगह मदही को माफ किया, उनको कृष्ण प्रेम दिया, उनको कहा कि पाप वापस नहीं करना और रोज हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। जब दीक्षा होता है तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि अभी रोज 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और 4 नियम पालन करना, अभी वापस पाप नहीं करना, अभी तक जो किया किया अभी वापस नहीं करना। एक दीक्षित भक्त को बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, बहुत ध्यान पूर्वक रोज बिना अपराध के 16 माला जप करना चाहिए और 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। ये एक दीक्षित भक्त वचन देता है अपने गुरु को, अग्नि के सामने, बाकी वैष्णव के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, डीटीज के सामने, मंदिर में या धाम में। तो एक इतना तो करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, 16 माला और 4 नियम पालन करने चाहिए। तो ये साधु का काम है, ये भक्त का काम। तो भगवान के संपर्क में आने से, भगवान कृष्ण के नाम के संपर्क में आने से हमारी आसुरिक प्रवृत्ति चली जाती है। वृंदावन में कालिया नाग था जो असुर था, विषैला था, और बच्चे और गायों को मार दिया उसने अपने विष से, यमुना के पानी को विषैला कर दिया, पेड़ पौधे भी नहीं आजू बाजू जिंदा रहे, पानी के ऊपर से पक्षी भी उड़ता है तो मर जाता है, इतना विष का प्रभाव था हवा में। उस कालिया को भगवान कृष्ण ने सजा दिया और उनको मारने वाले थे, कालिया की हत्या करने वाले थे, लेकिन कालिया की पत्नी जो भक्त हैं उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि इसको मत मारो, और कालिया भी बहुत विनम्र हो गया तो भगवान ने उसको नहीं मारा। और आज वो भक्त है, भगवान के चरण चिन्ह उसके सर पे हैं। तो कालिया असुर है लेकिन भगवान के भक्तों के कृपा से, अपने पत्नी के भक्ति के कृपा से वो भक्त बन गया। और यहाँ तक लिखा गया है कि किसी अलग युग में जब भगवान कालिया को सजा देते हैं, चेस्टाइज करते हैं, तो कालिया सेवा भी करता है। हम तो जो कृष्ण बुक में पढ़ रहे हैं अभी इस युग में क्या हुआ, कालिया को भेज दिया बाहर वृंदावन के। पिछले युग में भगवान ने कालिया के ऊपर राधा रानी, ललिता, विशाखा और सब गोपियों के साथ रासलीला किया था कालिया के ऊपर, मतलब कालिया जो प्लेटफॉर्म था वो हिल रहा था और उसके ऊपर भगवान ने रासलीला किया था राधा रानी के समेत। और उसके पिछले युग में भगवान मथुरा गए वृंदावन से, अक्रूर के साथ नहीं गए, फ्लाइट लिया उन्होंने, उड़ के गए कालिया के ऊपर बैठकर, कालिया उड़ के भगवान को मथुरा पहुंचाया, कंस को मारने का जल्दी था तो भगवान को उड़ के गए। तो असुर ने भगवान के भक्त बनकर भगवान की लीला में भाग लिया, भगवान के गोपियों का सेवा किया, भगवान के सेवा किया। तो ये इतना बड़ा मौका हमें मिला है भक्तों के समाज में आने से, भक्तों के संग में आने से, कि हम अपने असुरिक प्रवृत्ति छोड़कर अच्छे भक्त बन जाते हैं, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य छोड़कर, अपना सुस्ती छोड़कर, अपना रजोगुण तमोगुण का प्रभाव छोड़कर, अपना भौतिक इच्छाएं छोड़कर, अपनी भौतिक आसक्ति छोड़कर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है सुधार करने का, तो ऐसा सुधार करना चाहिए। और हमारे आजू बाजू अगर किसी को सुधार की जरूरत है, कोई परेशान कर रहा है या कोई बुरी आदत है किसी को, तो उसको मंदिर से निकाल नहीं देना चाहिए। ये तो मौका दिया है ना हर एक को सुधार करने का, भक्ति में इतनी शक्ति है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। भक्ति का मतलब ही है वो जो हृदय परिवर्तन करता है। सिर्फ ड्रेस परिवर्तन करना नहीं है, इस्कॉन इसलिए नहीं बनाया गया कि पैंट और शर्ट का फैक्ट्री बंद हो जाए और धोती और कुर्ते का फैक्ट्री चालू हो जाए। ड्रेस परिवर्तन नहीं करने के लिए, वो तो है, वैष्णव परिधान करना चाहिए, लेकिन इस्कॉन इसलिए बनाया कि हृदय में परिवर्तन आए। शुद्ध भक्ति मतलब हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट, और इसका मौका सबको मिलना चाहिए। आज अगर कोई साधना भक्ति करता है और उसमें कुछ गलती करता है या उसके में कुछ बुरी आदत आ जाती है या वो भक्तों के समाज में रहते हुए कोई गलत काम कर देता है, फिर भी उसको मौका देना चाहिए। भक्ति करने का मौका सबको देना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है वो भगवान कृष्ण के सामने झुककर भक्ति करे। हमारे खुद को भगवान रोज मौका देते हैं। कल जब सुबह सूर्य उगेगा तो भगवान कृष्ण हमें एक और दिन देंगे कि कल आपने भक्ति किया या नहीं किया, 16 माला ठीक से किया या नहीं किया, 4 नियम पालन किया या नहीं किया, मंगल आरती आए नहीं आए, कोई बात नहीं। आज नया दिन है, सूरज उगा है, आज वापस आपको मौका है, आज भक्ति अच्छा करो। कल जो भी हुआ, आज सोके उठे हम, आज हमें नया दिन दिया है कि आज अच्छा भक्ति करो, आज मंगल आरती करो, गुरु पूजा करो, 16 माला जप करो, ग्रंथ पढ़ो, सेवा करो, 4 नियम पालन करो। हर रोज भगवान कृष्ण हमें मौका देते हैं। कभी हमें गेट आउट नहीं बोला कि आज से लेकर आप भक्ति नहीं कर सकते, बहुत हो गया, मैं थक गया, करोड़ों सालों से आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं मैं, बैठा क्या खड़ा हूं मैं, और आप आज तक मेरे पे ध्यान नहीं दिए। अभी मैं आपका शरीर छोड़ के जा रहा हूं, आपका हृदय छोड़ के जा रहा हूं, अभी आप खुद मैनेज करो, गेट आउट। नहीं, हम सुअर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, बंदर के शरीर में या किसी पापी के शरीर में, फिर भी भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। किस लिए? कि हम कभी तो उनकी तरफ झुके, उनकी तरफ मुड़े। और कब से विराजमान है? करोड़ों सालों से, करोड़ों जन्मों से। है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई मित्र आपका जो आपके लिए इंतजार करेगा करोड़ों सालों से? नहीं। कितना भी अच्छा मित्र हो, उसको बोलो आप मंदिर के गेट पे आज 5 बजे मिलना, कितनी देर इंतजार करेगा? 5:01 पे आपको कॉल करेगा, अभी अभी आया नहीं? अगर आपने फोन नहीं उठाया तो दोबारा कॉल करेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट फिर चला जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा को इंतजार करेगा? 1 दिन 1 साल? ये है हमारे भगवान कृष्ण जो करोड़ों सालों से इंतजार कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में कि कभी तो ये आत्मा मेरी तरफ मुड़ेगा। इतना प्रेम करते हैं वो हमें, प्रेम है इसलिए तो इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो क्या हमसे कुछ चाहिए क्या उनको? नहीं, कि हमने भाड़ा नहीं दिया इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाड़ा देगा? हमको प्रेम करते हैं इसके लिए इंतजार कर रहे हैं हमारे। तो अभी तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि करोड़ों साल से भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं, मुझे भी उनको आई लव यू बोलना चाहिए, मुझे भी उनको प्रेम करना चाहिए, मुझे भी उनकी सेवा करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन में आज मुझे मौका मिला है भक्तों के संग में, इसलिए मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, भक्तों के संग में बहुत ही अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहिए। तो इसे हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, भक्ति करने से हमारा भगवान के साथ संबंध बन जाता है, हम पहचान जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, वे हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, और इस तरीके से हमारा भक्ति का जीवन चलते रहता है। तो हमारी बुरी आदतें कम करने के लिए और विनाश करने के लिए, किसी और की बुरी आदतें कम करने के लिए या विनाश करने के लिए, किसी और को मदद करने के लिए एक ही तरीका है कि उनको भक्ति में लगाया जाए, उनको बोलया जाए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। इसलिए जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, कि अपना सुधार करना चाहिए, अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहिए और कर पर उपकार और दूसरों को इसमें लगाना चाहिए, भक्ति में दोनों करना चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। और अपना जन्म सार्थक करने का तरीका है भगवान का नाम लेना, और दूसरों की मदद करने का तरीका है उनको भगवान का नाम सुनाना। तो ये करना चाहिए रोज कम से कम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करना चाहिए। और दूसरों को बोलना चाहिए कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, मंदिर में आइए, प्रणाम कीजिए, आरती में भाग लीजिए, 16 माला जप कीजिए, सेवा कीजिए। तो इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और समाज में परिवर्तन होगा। भक्ति से जैसे ऐसे प्रचार होगा, समाज में परिवर्तन होगा, ये समाज अच्छा बन जाएगा। समाज में शांति होगी, हिंसा नहीं होगी, डर नहीं होगा, यही वैकुंठ बन जाएगा। तो हमें अच्छा मौका मिला है, तो भक्तों के समाज में हम अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहिए और प्रचार में सहायता करना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही भक्ति एक तरीका है असुरों को देवता बनाने का, जो कि संभव है। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण, माइक में बोलिए। हाँ, मेरा बताने का मतलब था कि जैसे पुलिस का ड्रेस पहनने से आप पुलिस नहीं बनते, या पुलिस स्टेशन के कुर्सी पर बैठकर पुलिस नहीं बनते, वैसे सिर्फ सैफरन ड्रेस पहन के आप साधु नहीं बनते, या सिर्फ मंदिर या वृंदावन में रहने से साधु नहीं बनते, कृपा से बनते हैं। वृंदावन का यह स्पेशल कृपा है कि धाम में रहने से भगवान का नाम कान में जा रहा है और धाम का हवा पानी धूल ब्रज रज सर पे जा रही है, तो कृपा मिल रही है। ये वृंदावन का स्पेशल है। लेकिन किसी को संग करने के लिए सिर्फ इतना देखना काफ़ी नहीं है कि वो वृंदावन में रहता है तो काफ़ी है, राइट। हमें संग करना है तो ऐसे भक्त से संग करना चाहिए जो गुरु परंपरा के निर्देश के अनुसार पालन भी कर रहे हैं। तो जो वृंदावन में रहते हैं, ब्रजवासी हैं, वो महान हैं और पूजनीय हैं, उनके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम अपने भक्ति के लिए अगर संग करना है तो पहचान करने के लिए सिर्फ ड्रेस और एड्रेस नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।